हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप सुन रहे हो मेरा पॉलिटिकल पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटिक्स में एक काफ़ी बुरा दिन है, क्योंकि आज हमारे जो जॉर्ज फर्नांडिस थे उनका निधन हो चुका है। हम जॉर्ज फर्नांडिस को हमारे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री के रूप में पहचानते हैं, जिनके लीडरशिप के अंडर पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो हुआ था। कारगिल वॉर के समय भी वो जो भारत के संरक्षण मंत्री थे, और उसके अलावा उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो परिचय है वो है ट्रेड यूनियन निस्ट के हिसाब से, क्योंकि एक मजदूर नेता बोलकर उन्होंने शुरुआत की थी। भारत का जो सबसे पहला बंद है वो उन्होंने पुकारा था, और बाला साहेब ठाकरे के बाद वही थे जो चाहे तो मुंबई बंद करवा सकते थे, इतना ज़्यादा उनका सपोर्ट बेस था, क्योंकि उन्होंने हमेशा मजदूरों के लिए और जो छोटे मोटे काम करते हैं उन सब के लिए एक नेता की तरह काम किया है। उनका जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो उनके पिताजी चाहते थे कि वो लॉयर बने, उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उनके डैडी तो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे पीयरलेस में, लेकिन बच्चों से उनको ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जॉर्ज सबसे बड़े थे, 6 भाई थे उनमें से सबसे बड़े 6 लोगों में। और उनका जन्म 3 जून 1930 में हुआ था एक कैथलिक क्रिश्चियन फैमिली में। 19 साल में उन्होंने होटल एंड ट्रांसपोर्ट के जो सेक्टर्स है वहाँ के जो मज़दूर है उनको एक साथ लाने के लिए काम किया था। वो मैंगलोर छोड़ के मुंबई में आए थे, क्योंकि जो उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि प्रेस्ट बनना है, वहाँ पे उनको थोड़ी सी हिपोक्रेसी नज़र आई। उनको ऐसे लगा कि जो वहाँ पे बताया जाता है, जो प्रीच किया जाता है और जो फॉलो किया जाता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब वो मुंबई में आए, यहाँ पे उनका कोई नहीं था तो रास्ते पे सोते थे। जब उनको किसी ने वहाँ से उठा दिया तो उनको पता चला कि अरे यार, यहाँ पे तो रास्ते भी रिजर्व्ड है, यहाँ पे होमलेस लोगों का कोई कमी नहीं है, हर कोई यहाँ पे बहुत ही मारा हुआ है हालातों का। फिर धीरे धीरे उन्होंने छोटा मोटा जॉब करना चालू किया, और जो लेबर्स हैं उनका उन्होंने एक यूनियन बना लिया। उनका जो इंस्पिरेशन था वो था कामगार नेते डिमेलो और जो समाजवादी विचारवंत है राम मनोहर लोहिया। और राम मनोहर लोहिया सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस नहीं तो काफ़ी एक पूरी पीढ़ी को वो इंस्पायर कर चुके हैं। 1967 में दक्षिण मुंबई लोकसभा में उन्होंने पहले बार उम्मीदवारी लड़ी थी, एज ए इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, और वहाँ पे उन्होंने एसके पाटिल जो वहाँ के सीनियर मोस्ट लीडर थे, उनको 2 टर्म्स का जिनको एक्सपीरियंस था उनको हरा दिया और लोकसभा में एंटर कर गए। उसके बाद एसके पाटिल का जो करियर है पॉलिटिकल वो वहीं पे ख़त्म हो चुका था, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस नाम का एक नेता भारत को मिल गया था। और ये जो नेता था वो सिर्फ लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं लड़ता था, तो इनकी लड़ाई रास्ते पे भी थी। आनी बानी का जो टाइम था वो उस टाइम पे मुझे 1975 जून में शायद इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की थी, और उस समय में एज अ यूनियन लीडर उनको भी वहाँ पे जेल में डाला गया था, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी का कड़ा विरोध किया था। और इमरजेंसी के समय ही मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो और जॉर्ज फर्नांडिस हो, ऐसे जो युवा नेता है वो लोगों के सामने आए थे। 1977 में मोरारजी देसाई के जो गवर्नमेंट था उसके अंडर वो उद्योग मंत्री थे, लेकिन फिर 1979 में उन्होंने यशवंतराव चव्हाण जो कांग्रेस के नेते हैं वहाँ पे जो अविश्वास ठहराव रखा था उसके समय एक जबरदस्त भाषण देकर उन्होंने पंतप्रधान मोरारजी देसाई से का जो मंत्रिमंडल है उसमें से इस्तीफा दिया था। फिर 1984 में मैंगलोर के लोकसभा मतदान से वो लड़े लेकिन वहाँ पे बुरी तरह से हार गए। 1979 में वो बिहार के मुजफ्फर लोकसभा मतदान में पहली बार जनता दल के टिकट पर लोकसभा में जीते और उसके बाद वो लगातार वहाँ पे जीतते आए हैं। संयुक्त आघाड़ी सरकार में वो रेलवे मंत्री रहे एनडीए में, और 1951 में फिर से वो लोकसभा मतदान में जनता दल से विजयी होकर आए। 1994 में नीतीश कुमार, रवि रे ऐसे नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने समता पक्ष स्थापन किया था, और 1996 में समता पक्ष ने बीजेपी के साथ युति कर ली, और तब से थोड़ा सा उनका जो राइट विंग के आइडियोलॉजी की तरफ जो झुकाव है वो बढ़ते गया, क्योंकि उसके पहले वो काफ़ी सोशलिस्ट माने जाते थे, एक समतावादी नेता के तरीके से उन्होंने काम किया था। 1990 लोकसभा सभा के जो इलेक्शन है उसके पहले समता पक्ष और लोक शक्ति ये दो पार्टीज का मर्जर हुआ था और जनता दल नाम का एक नया पक्ष पैदा हुआ था। 1998 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में डिफेंस मिनिस्टर बने पहली बार, और 2001 में जब उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे कॉफिन स्कैम से रिलेटेड और जो डिफेंस से रिलेटेड, तो उन्होंने मार्च से अक्टूबर ये पूरा जो पीरियड है वो मंत्रिमंडल के बाहर निकाला, और लेकिन उनका जो काम था उसकी वजह से 2001 में फिर से वो संरक्षण मंत्री बने, और उसके बाद आप सभी को पता है कि उनका कार्यकाल कैसे रहा। तो जॉर्ज फर्नांडिस काफ़ी एक लड़वैया तरीके के नेते थे और बहुत लोगों को उन्होंने उनके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि इतना पावरफुल होने के बावजूद वो बहुत हम्बल हम्बल इंसान थे। अपने काम खुद करते थे, खुद का कपड़ा खुद धोना, उनको इस्त्री खुद करना, ये सारे काम वो करते थे। और उनका जो बहुत सारे लैंग्वेजेस पे उनका प्रभुत्व था, वो अच्छा तमिल बात कर सकते थे, मराठी बात कर सकते थे, हिंदी बात कर सकते थे, इंग्लिश बात कर सकते थे, तो ऐसे 7-8 भाषा उनको अवगत थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और लोगों से ऊपर आए हुए नेता थे। काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने अपने लाइफ में किया था और उसी के कारण आज आप देखोगे तो उनके मौत के बाद सारे तबके से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर कोई उनको आज याद कर रहा है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और यही होती है एक नेता की पहचान कि वो पार्टीज के ऊपर होते हैं उनके काम की वजह से। और जॉर्ज फर्नांडिस तो काफ़ी 1960 से लेकर 2000 तक 2000 2005 तक वो बहुत ही एक्टिव रहे हैं राजकारण में, और इसलिए उनका जाना एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करता है इंडियन पॉलिटिक्स में। और मैं समझता हूँ कि वो स्वतंत्र के पहले जन्मे हुए ऐसे लास्ट नेता थे जो उनके एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव विचारों के वजह से जाने जाते थे। मेरे ख्याल से उसके बाद अभी जितने भी नेता लोग आए हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए काम करते हैं, उनका जो रवैया होता है पूरा मैनिपुलेशन वाला होता है, क्योंकि वो जो पॉलिटिक्स होती है वो विचारधारा पे कम और इलेक्शंस जीतने के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होती है। तो यही है आज का पॉडकास्ट, कि जॉर्ज फर्नांडिस की जो आत्मा है उसको शांति मिले, और RIP मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, नेशन विल ऑलवेज रिमेंबर यू। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को ये जो पॉडकास्ट है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको और भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे मेरे विचार जानने हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने बताएं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।